मेरे आत्मीय बंधुओं नमस्कार। आज 11 जनवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों के लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग जनरली सक्सेस पर बात कर रहे हैं कि सक्सेस कैसे मिलती है। उसी बात को आज मैं थोड़ा अलग अंदाज से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। अक्सर देखिए कि जब सक्सेस के बारे में कोई प्रश्न किया जाता है तो हमारे प्रश्न का कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है कि सफलता का कोई रहस्य बताइए, राज। यानी कि यह माना गया है कि जो सफलता होती है वो कोई बहुत ही रहस्यपूर्ण चीज है, बहुत ही रहस्यमय चीज है। उस वो कहीं बहुत ही अंधेरे में या जमीन की बहुत नीचे की गहराई में या अंतरिक्ष में वो छिपी हुई है और उसे जब तक हम उसके रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। जबकि मित्रों, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने विचार आपके सामने रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि सच पूछिए तो सफलता का कोई रहस्य नहीं होता है। सफलता कोई रहस्यपूर्ण चीज नहीं है, वो कोई जादुई वस्तु नहीं है, वो कोई सम्मोहित करने वाली बात नहीं है कि अगर मुझे सम्मोहन आता है, दूसरे को सम्मोहित करना, तब तो मैं सफल हो पाऊंगा, अदरवाइज मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। देखिए, सच पूछिए तो सफलता का अपना एक विज्ञान है, बहुत ही स्थापित विज्ञान है। आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए और बड़ी ईमानदारी के साथ जब आप उससे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जब वह अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था तब बिल्कुल उसके मन में उसी तरह की आशंकाएं पैदा होती थी, उसी तरह के उसके दिमाग में जद्दोजहद पैदा होते थे, आशा निराशा तूफान शांति के भाव आते थे जिस तरह से आपके मन में आते हैं। वह भी बिल्कुल आपकी तरह ही व्यक्ति था, राइट? यानी कि वह भी जूझ रहा था। आप जिस तरीके से जूझ रहे होंगे वह भी बिल्कुल उसी तरीके से उस दौर में जूझ रहा था। जूझते जूझते अंततः वह सफलता प्राप्त कर लेता है। जब वह छोटी सफलता प्राप्त करता है तो धीरे धीरे, चूंकि वह उसमें लगा रहता है, तो वही सफलता एक बड़ी सफलता में तब्दील हो जाती है। और जब उसकी उस बड़ी सफलता का मूल्यांकन हम अपनी सफलताओं से करते हैं, जब उसकी तुलना करते हैं, तब लगता है कि अरे बाप रे, हम तो ये छोटी सी चीज भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जबकि उसने इतनी बड़ी चीज हासिल कर ली। लेकिन मित्रों, सच पूछिए तो बहुत ईमानदारी के साथ वह यह बताने की स्थिति में होता है कि उसको यह सफलता मिली कैसे है। उसमें कोई जादू नहीं है, उसके कोई ऐसे आंकड़े नहीं है, वो बिल्कुल एक विज्ञान की तरह आपके सामने अपनी सफलता के चरणों को स्टेप बाय स्टेप रख सकता है, बिल्कुल उसका खुलासा किया जा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, यह कोई बहुत बड़ा रहस्य है और हमें उस रहस्य को जानना चाहिए। मित्रों, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे यहां जिन्हें भगवान माना गया, राम को भगवान माना गया, कृष्ण को भगवान माना गया, ईसाई धर्म में क्रिश्चियन ईश्वर के पुत्र हैं, हमारे मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं, सिख धर्म गुरु नानक देव को एक ईश्वर के समकक्ष मानता है। आप इनके कभी जीवनियां पढ़ने की कोशिश कीजिए, जीवनियां पढ़िए, क्योंकि जब आप जीवनियां पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये सच में अभी जो भगवान बने हैं, जिन्हें हम मान्यता दे रहे हैं भगवान की, या यूं कह लीजिए कि आप भगवान शुरू से ही मानते हैं, लेकिन जो इन्होंने काम की शुरुआत की है और वहां जो जद्दोजहद किए हैं और जद्दोजहद के बाद सफलता प्राप्त की है, वो बिल्कुल वैसी ही है कमोवेश जैसे कि आपकी और हमारी होती है। आप सोच करके देखिए कि जिन्हें हम ईश्वर सदृश मान रहे हैं, स्वयं ईश्वर मान रहे हैं, ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, यदि उन्हें भी जद्दोजहद के तहत गुजरना पड़ता है तो फिर सफलता का रहस्य क्या रह गया? ईश्वर तो उनके अल्टीमेट अचीवमेंट है कि हम उनकी सफलताओं को ईश्वर के समकक्ष मानते हुए उन्हें ईश्वर ही मान लेते हैं। वो सफलता का एक मतलब हाइएस्ट पॉइंट है। सफलता के उसके नीचे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बहुत ही नीचे नीचे के चरण होते हैं। हम सब उन अलग अलग चरणों पर अपनी सफलताओं का निर्धारण करते हैं और उसे ही अपनी सफलता मान करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हर कोई तो ईश्वर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और ये कह लीजिए कि क्षमता तो उसमें है। आप चलिए बहुत ही महान लोगों के चरित्रों को देख लीजिए, चल ईश्वर की बात छोड़िए, आप गांधी जी को देख लीजिए, आप अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, आप आइंस्टीन को देख लीजिए, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की सफलताओं का आप थोड़ा सा जायजा लीजिए और बहुत यथार्थ तरीके से उनके जीवन को देखने और समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये सफलता इन्हें मिली कैसे है। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इन्हें भी कोई भरोसा नहीं था कि हम इतने सफल हो जाएंगे। ये तो अपना चलते चले जा रहे थे और उन्हीं के साथ में बहुत से दूसरे लोग भी चले, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक ये लोग पहुंच सके। तो मित्रों, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि चूंकि आप सब मेरे जो प्रिय श्रोता हैं उनमें से ज्यादातर युवा हैं, इस बात पर यकीन करना शुरू कीजिए कि जो सफलता है उसका कोई रहस्य नहीं है, वह बिल्कुल विज्ञान है जिसे आप सोच सकते हैं, जिसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब सोचने समझने और छूने देखने के बाद आप उसे एक्शन में ला भी सकते हैं, एक्शन में ला सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्षमता है वो अपरंपार है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस उन लोगों ने किया यह है कि अपने इस मानसिक क्षमता का अधिकतम प्रयोग किया है, हम उसका अधिकतम प्रयोग नहीं कर पाते। मित्रों, दो तरह के साधन होते हैं, हम लोगों ने कल साधन के बारे में बात की थी। इस शब्द की व्याख्या में इससे पहले भी मुझे ध्यान आ रहा है कि एक दो बार मैं कर चुका हूं, यहां फिर से दोहराना चाहूंगा। हमारे दो प्रकार के साधन होते हैं हमारे पास। देखिए, एक तो हमारे पास भौतिक साधन होते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें दिखाई देते हैं, जो हम खरीद सकते हैं, जिनकी हम व्यवस्था कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो हमारे पास साधन है जो हमारा बहुत ही निजी होता है, वो हमारी मानसिक क्षमता भी मैं नहीं कहता हूं, क्षमता तो होती है सब में कमोवेश थोड़े बहुत अंतर से, हमारे विचार। आपके विचार कैसे हैं, यह हमारे दूसरा सबसे बड़ा साधन है। और भौतिक साधन और इस वैचारिक साधन को मिला करके जब हम उनका उपयोग करते हैं, तो जब हम उपयोग कर रहे होते हैं तो आप यूं कह लीजिए कि हम साधना कर रहे हैं, यानी कि अब हमने इस साधन को साधना में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कितना प्यारा शब्द है, साधनों का उपयोग किया जाना, समुचित उपयोग किया जाना ही साधना कहलाता है। और मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो साधना करने वाले को आप क्या कहते हैं, हिंदी में शब्द है और वो भी बहुत ही प्यारा और बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्रभावशाली शब्द है, जो साधना करता है उसे ही हम कह देते हैं साधक, राइट। अब आप देखिए कि जनरली हम जब साधक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई साधु महात्मा होगा जो किसी गुफा में जाकर के एकांत में बैठ करके कुछ तपस्या कर रहा होगा, यह हमारे दिमाग में आता है। लेकिन नहीं, आपके पास जो भी साधन है अगर आप उनका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो आप इनफैक्ट साधना ही कर रहे हैं, और चूंकि आप साधना कर रहे हैं तो आप साधक हैं। इसी के लिए एक और शब्द रखा गया है, साधु। जो साधना करता है वो साधु। और जब हम साधक बन जाते हैं मित्रों, मान करके चलिए, तो हमारी साध पूरी हो जाती है। साध का मतलब है इच्छा, लोक भाषा का शब्द है और आप में से बहुत से लोग इस शब्द से परिचित भी होंगे। तो अब आप देखिए कि कैसे जो साधन था उसको हमने साधना में कन्वर्ट किया। हम जो एक कर्मशील व्यक्ति थे, हमने अपने आप को साधक बनाया, और साधक बनाया किसके माध्यम से, साधनों के माध्यम से। और जब हमने साधन को साधना करके साध लिया तो हमारी साध पूरी हो गई। साध का मतलब यह भी होता है कि आप साध लें, मतलब उसका उस पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लें। लेकिन मित्रों, सबसे खतरनाक बात जो होती है वो ये होती है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो हमारी शक्ति है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारा साधन है और सबसे प्रबल साधन है, उसका हम ठीक से उपयोग नहीं करते। सच पूछे तो उस लेवल पर हम ढेर सारे समझौते करते हैं, अनंत समझौते करते हैं, यही सबसे ज्यादा समझौते होते हैं। कैसे समझौते करेंगे, अभी नहीं, चलो बाद में, अरे इसके बिना भी तो काम चल जाएगा, अरे चलो इतना ही कर लेते हैं, अरे चलो छोड़ो, इस तरह की जो बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, इन्हें ही मैं कह रहा हूं मानसिक समझौते। यानी कि जो हमारी क्षमता है हम उसको सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको एक प्रकार से नष्ट होने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हम ज्यादा से ज्यादा अपने भौतिक साधनों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भौतिक साधन है वो दिखाई देते हैं, उन्हें हम एक्शन में ले सकते हैं, सच पूछिए तो उनका उपयोग करने के लिए हम दूसरों की भी थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं। लेकिन जो मानसिक जो साधना है वो तो आपको खुद ही करनी होगी, इसके लिए आप दूसरों की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होती है या ज्यादा डिसिप्लिन की मांग करती है, तो हम फिर इसे टालते चले जाते हैं। और सच पूछिए तो फिर जो हमारे पूरे के पूरे जो एक्शन है, या यूं कह लीजिए कि जो हमारी साधना है, वो असंतुलित हो जाती है। और मित्रों, जब साधना असंतुलित होगी आप बताइए तो फिर आपकी चाल कैसे बेहतर हो सकती है। अगर मेरे दो पैर हैं, दो पैर तो है ही, अगर इन दो पैरों में से एक पैर मेरा खराब है और दूसरा पैर भले ही मजबूत हो, तो मैं दौड़ तो नहीं सकता, चलने फिरने का काम किसी तरह से निपटा सकता हूं। और यही हम सबके साथ ज्यादातर होता है कि जो भौतिक साधन है वो तो हमारे मजबूत हो सकते हैं, कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन जो हमारे मानसिक साधन है उसे हम मजबूत नहीं बना पाते, और इस तरीके से फिर लंगड़ा लंगड़ा कर हमारे जीवन की यात्रा हम पूरी करते रहते हैं। और वही सच पूछिए वहीं पर जाकर के हमें लगता है कि नहीं, सफलता कोई रहस्य वाली चीज होगी, बात बन नहीं रही है। मित्रों, विश्वास कीजिए कि सफलता कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं है। आप जब इस एंगल से सोचना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में एक अलग किस्म की चमक पैदा हो रही है, वह अंगड़ाइयां लेने लगी है, और सच पूछिए तो वो नए एंगल से सोचने भी लगी है। और फिर जब वो नए एंगल से सोचना शुरू कर देगी तो आपको नए रास्ते भी दिखाई देंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, आप सबकी इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।